समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
बचपन में हम सबने अर्जुन की वो कहानी पढ़ी और सुनी है जिसमें द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों से निशाना लगाने को कहते हैं, लेकिन निशाने के लिए लक्ष्य के रूप में सिर्फ अर्जुन को ही चिड़िया की आंख दिखाई देती है जबकि अन्य शिष्यों को अलग अलग चीजें। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर हम भी समस्याओं पर अगर ध्यान लगाएंगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और अगर लक्ष्य पर ध्यान लगाएंगे तो यकीन मानिए हमें समस्याएं दिखनी यकीनन बंद हो जाएंगी। तो बस ये हम पर है, हमें जिंदगी से क्या चाहिए, समस्याएं या हमारा लक्ष्य। याद रखिए, समस्याएं सिर्फ पार्ट ऑफ लाइफ हैं, लेकिन उन्हें दरगुजर करके आगे बढ़ जाना आर्ट ऑफ लाइफ कहलाता है। इसी सोच के साथ आगाज करते हैं FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। साथ हूँ आपके मैं नईम अख्तर और मेरी साथी सुभद्रा रामचंद्रन। आपको क्या दिखाई दे रहा है सुभद्रा?
Beautiful life today, Naeem. Yes, it's a beautiful life. It's getting a little cold. Anyway, so friends, a very warm welcome to you all. We are meeting this lovely Monday morning. Stay with us for an interesting edition of Aaj Savere, our news magazine program. For starters, we have some news headlines, Naeem.
Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिन के इस सम्मेलन में श्री मोदी उद्घाटन भाषण देंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई केंद्रीय मंत्री इस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में व्यापार जगत के 5,000 से अधिक प्रतिनिधि, राजनयिक, निवेशक और अन्य भागीदार शामिल होंगे। हालांकि सम्मेलन से पहले ही 30 लाख से अधिक रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इस सम्मेलन में 32 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिनमें से 17 साझेदार देश हैं। उद्घाटन के बाद विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित चर्चाओं के सत्र होंगे। अगले दिन प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन होगा और समापन के दिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर सम्मेलन आयोजित होगा।
Prime Minister Narendra Modi will launch LIC's Bima Sakhi Yojana and lay the foundation stone of the main campus of Maharana Pratap Horticultural University at Panipat in Haryana today. More from our correspondent.
The Bima Sakhi Yojana, which is an initiative of Life Insurance Corporation of India, is designed to empower women aged 18 to 70 years who are class 10 pass. They will receive specialized training and a stipend for the first 3 years to promote financial literacy and insurance awareness. After training, they can serve as LIC agents, and the graduate Bima Sakhis will have the opportunities to qualify for being considered for development officer roles in LIC. Today, Mr. Modi will also distribute appointment certificates to prospective Bima Sakhis. During the program, Prime Minister will also lay the foundation stone of the main campus of Maharana Pratap Horticultural University, Karnal. The main campus and 6 regional research stations spread over 495 acres will be established at a cost of over 700 crore rupees. Anupam Mishra, Akashwani News, Panipat.
विदेश सचिव विक्रम मिश्री आज बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे। शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से अपदस्थ किए जाने के बाद यह उनका पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि विदेश सचिव ढाका में विदेश कार्यालय परामर्श के अंतर्गत एक बैठक में भाग लेंगे। वो कई अन्य बैठकों में भाग लेने के अलावा बांग्लादेश के विदेश सचिव के साथ बातचीत करेंगे। श्री मिस्त्री की ये यात्रा बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रही है। उन्होंने हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर कहा कि भारत इस मामले में निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी न्याय प्रक्रिया की आशा करता है।
Defence Minister Rajnath Singh will commission the Indian Navy's latest multi-role stealth guided missile frigate INS Tushil at Yantra Shipyard in Kaliningrad, Russia today. Chief of the Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi will also be present on the occasion. Defence Minister arrived in Moscow last night on a 3-day visit to Russia. Mr. Singh and his Russian counterpart Andrei Belousov will co-chair the 21st meeting of India-Russia Intergovernmental Commission on Military and Military Technical Cooperation in Moscow tomorrow. The two leaders will review the entire range of multifaceted relations between the two countries in the field of defense, including military to military and industrial cooperation. They will also exchange views on contemporary regional and global issues of mutual interest. The defense minister will pay tributes at the tomb of the unknown soldier in Moscow to honor the Soviet soldiers killed during the Second World War. He will also interact with the members of the Indian community.
सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद पश्चिम एशिया से भागकर अपने परिवार के साथ मॉस्को पहुंच गए हैं। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के सूत्रों के अनुसार वहां उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी गई है। बशर अल असद को राजधानी दमिश्क का नियंत्रण अबू मोहम्मद अल जोलानी के नेतृत्व में विद्रोही गुटों के हाथों में आने के बाद देश छोड़ना पड़ा। इसके साथ ही सीरिया में दशकों से चले आ रहे असद का शासन समाप्त हो गया। सीरिया का राजनीतिक स्थिति में तेजी से हुए बदलाव ने क्षेत्रीय स्थिरता में अरब देशों की चिंता बढ़ा दी है। इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए हमले और उसके बाद गजा में संघर्ष से पैदा तनाव के बीच ये चिंता और भी गंभीर हो गई है। बशर अल असद के सीरिया छोड़ने के साथ ही नाटकीय रूप से वहां की रूस की वापसी भी हो गई है। रूस ने विपक्षी समूहों के विरुद्ध असद की सहायता के लिए 2015 में सीरिया में सैन्य टुकड़ियां तैनात की थीं। सीरिया अभी तक रूस का मजबूत सहयोगी रहा है और वो यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान का समर्थन करता रहा है। विश्व के अन्य नेताओं ने सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद आशा व्यक्त की है कि वहां जल्द ही स्थिति सामान्य होगी। सीरिया की स्थिति सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में विश्व के नेताओं ने हालात की निगरानी के साथ ही वहां के लोगों को मदद का आश्वासन दिया है।
Getting to some sports news now. In hockey, India registered a crushing victory over Bangladesh in the Women's Junior Asia Cup at Muscat in Oman last night. The Indian team secured this victory with a large margin of 13-1. For India, Mumtaz Khan spearheaded the effort with an impressive 4 goals. Supported by hat-tricks from Kanika Sivach and Deepika, India showcased superior strategy and execution, continuously overwhelming the Bangladesh defense. Manisha Beauty Dung Dung and vice-captain Sakshi Rana also found the back of the net, contributing to the lopsided scoreline. India will now face Malaysia today in their next group game, aiming to defend their title and secure direct qualification for next year's Junior World Cup in Santiago, Chile. The match will begin at 8:30 p.m. IST.
और अब सुभद्रा, प्रमुख महानगरों से जुड़ी हुई प्रमुख खबरें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने का वक्त है।
Yes, I'm going to start with Chennai News.
जी,
the trial of Chennai Metro Rail's first driverless train will be conducted this month as a first stretch of phase 2. Poonamalli to Porur will function by the end of 2025. The trial will start with a speed of 10 kilometers per hour. It will be improved gradually. The train is designed for a safe speed of 90 kilometers per hour, an operational speed of 80 kilometers per hour. The main purpose of this train is to check how the train runs with variable speed. Initially, the trial will be conducted in the depot and gradually between Poonamalli and Porur stations. These trains are designed to run on the 26-kilometer corridor, a segment of Phase 2 linking Poonamalli bypass to Lighthouse via 28 stations, of which 18 are elevated and 10 are underground. The Greater Chennai Corporation plans to develop eco-parks around 40 ponds in Chennai as part of Blue-Green Infrastructure Initiative. The parks will be built using percolation tiles instead of concrete, and they will be connected to a stormwater drain so that in case of water flow, it directs to the nearest water body. To prevent flooding and enhance groundwater storage, this eco-park will play a prominent role. Placing bamboo garden and flowering plants are expected to attract bees, butterflies and other pollinating creatures. And Naeem, are you taking us to Delhi now?
जी बिल्कुल। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेला शहर के मंडी हाउस स्थित रविन्द्र भवन परिसर में चल रहा है। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस पुस्तक मेले में पुस्तक प्रेमियों की काफी चहल पहल देखी जा रही है। 10 दिन तक चलने वाले इस पुस्तक मेले में विभिन्न प्रकाशकों के अलग अलग भाषाओं और लेखकों की किताबों के स्टॉल लगाए गए हैं। इस मेले में हिंदी, मैथिली, असमिया, डोगरी, बोडो, तेलुगू, मलयालम और पंजाबी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें उपलब्ध हैं। पठन पाठन में लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए पुस्तक मेले में कई सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें हिंदी कवि सम्मेलन, युवा साहित्य, बहुभाषी कविता पाठ, मुशायरा, लघु कथा वाचन और विभिन्न विषयों पर चर्चाएं शामिल हैं। मेले में प्रवेश निशुल्क है और लोग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक मेले में जा सकते हैं। एक और खबर दिल्ली से यह है कि दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। इस आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। ये लोक अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय, सभी जिला न्यायालयों, जिला उपभोक्ता मंचों, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और स्थायी लोक अदालत में होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक अपराध, चेक अनादर मामले, धन वसूली विवाद, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी बिल विवाद, वैवाहिक विवाद जैसे तलाक आदि को छोड़कर और यातायात चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी।
Yes, we are going to Bangalore now. The winter session of the Karnataka legislature is beginning today at the Swarna Vidhan Sauda in Belagavi. The opposition coalition comprising the BJP and JDS is gearing up to confront the ruling Congress government on several contentious issues. Key topics include the alleged scam involving the Mysuru Urban Development Authority, MUDA, recent notices issued by the Waqf Board, and the alarming maternal deaths reported at the Bellary District Hospital. The Congress, buoyed by its recent victory in all three states in the November bipolls, is expected to leverage internal divisions within the BJP to counter the opposition's onslaught. The BJP, which organized a padayatra from Bengaluru to Mysuru over the MUDA scam and launched a campaign against the Waqf Board notices, is likely to bring these issues to the forefront during the initial days of the session. Time it is for metro from Mumbai,
जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए आमंत्रित किया। सहयात्री गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने इस भव्य उत्सव के आयोजन के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को प्रोत्साहित करने और महाकुंभ को ऐतिहासिक आयोजन बनाने के लिए आधुनिक सुविधाएं शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लोकाचार की नब्ज है। उन्होंने आगे बताया कि महाकुंभ अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रयागराज में 12 साल के अंतराल के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और एक और खबर महाराष्ट्र से है। 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा आज विशेष सत्र के आखिरी दिन अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी। चूंकि भाजपा के राहुल नार्वेकर मैदान में एकमात्र उम्मीदवार हैं, इसलिए उनके नाम के आधिकारिक रूप से निर्विरोध घोषणा होने की उम्मीद है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा रविवार को दोपहर 12 बजे समाप्त हो गई, क्योंकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी से किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया, जिससे नार्वेकर के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुनाव का रास्ता साफ हो गया। औपचारिक घोषणा से पहले विधानसभा के शेष सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर शपथ दिलाएंगे। इसके बाद अध्यक्ष के चुनाव के बारे में घोषणा की जाएगी। इसके बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। फिर सदनों को शीतकालीन सत्र तक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, जो इस महीने के अंत में नागपुर में होने वाला है।
Getting to Hyderabad now, the Prajapalana Vijay Utsavalu, in connection with 1 year of completion of Congress government in Telangana, witnessed a lively array of events, drawing a massive crowd to the HMDA grounds on PVNR Marg in Hyderabad yesterday evening. The festivities featured food stalls, handicraft displays, and a captivating musical performance by playback singer Rahul Sipliganj, known for his Oscar-winning song Natu Natu. Chief Minister Revanth Reddy, along with cabinet ministers and senior bureaucrats, graced the event. The evening was abuzz with excitement as Tollywood singer Sipliganj took to the stage enthralling the audience with his repertoire of popular songs, which receives thunderous applause. As part of the effort to develop Ramappa Temple as a prominent tourist destination, the centre released 73 crore rupees yesterday. It is also known as Rudreshwara Temple, which is situated in Palampet village of Mulugu district. The Union Tourism Ministry issued a GO in this regard. The temple will be developed under the Special Assistance to States for Capital Investment SASCI scheme. The SASCI is a program that provides long-term interest-free loans to states for developing tourist centers. Naeem?
جی میرے پاس کولکاتا سے ایک خبر ہے سبھدرا سردی کے موسم اور یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے ہمارے سننے والوں کے لیے سردی کے موسم کے آتے ہی کولکاتا کے علی پور زولوجیکل پارک میں جانوروں کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا آنا شروع ہو گیا ہے راجیہ کے ون منتری بیر بہا ہانسدا اس سال 25 اگست کو چڑیا گھر میں واک ان ایویری کا ادگھاٹن کریں گے اس ایویری میں درشکوں کے لیے 14 طرح کے پکشی رکھے جائیں گے درشکوں کے لیے رویوار کو آن لائن ٹکٹ بکنگ بھی شروع کر دی گئی ہے اور پرمکھ مہانگروں کی خبروں کے بعد پرمکھ مہانگروں کے موسم کا ذکر کر لیتے ہیں دلی اور آس پاس کے کھیتروں میں صبح کے سمے گھنا کوہرا چھایا رہے گا ادھکتم تاپمان 23 ڈگری سیلسیس اور نیونتم 8 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا انومان ہے ممبئی میں موسم صاف رہنے کا انومان ہے نیونتم تاپمان 18 ڈگری سیلسیس اور ادھکتم تاپمان 32 ڈگری سیلسیس رہنے کی سمبھاونا ہے اور کولکاتا میں صبح کے سمے کوہرا چھانے اور بعد میں آنشک روپ سے بادل چھائے رہنے کا انومان ہے نیونتم تاپمان 17 ڈگری سیلسیس اور ادھکتم 26 ڈگری سیلسیس رہنے کی سمبھاونا ہے
چینئی از ایکسپیکٹڈ ٹو ہیو فاگ اینڈ مسٹ ان دی مارننگ And partly cloudy sky will be seen later on. The minimum temperature was 24 degrees Celsius. Maximum will be around 31 degrees. Bengaluru is also expected to have mist. The minimum temperature was 18 degrees Celsius. Maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
Gee. اور اب ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں ہم آج کی تاریخ کے بارے میں کچھ بات کریں گے
Yes, of course. And Naeem, today is International Anti-Corruption Day. It is observed this day every year to highlight how corruption affects health, education, justice, democracy, prosperity and development.
اور ہمارے کلچر کو بھی
Yes, of course. And this year, Naeem, the youngsters will be taking care of this crucial talk. As the theme for 2024 is uniting with youth against corruption, shaping tomorrow's integrity.
Mm-hmm.
And you know, the youngsters have the potential to become powerful agents of change in the fight for a future rooted in integrity.
Aur hona bhi chahiye, hamari young generation hi kuch change la sakti hai.
They're tech savvy, net savvy, everything else, right?
Yeah. تو یہ تو آج کے دن کی بات ہو گئی اور آج کی تاریخ میں اتہاس میں کیا کیا گھٹا اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں سن 1625 میں ہالینڈ اور انگلینڈ کے بیچ آج ہی کے دن سینے سندھی پر ہستاکشر ہوئے تھے 1762 میں برٹش سنسد نے پیرس سندھی کو سویکار کیا تھا
1854 الفریڈ لارڈ ٹینیسن پوئم دی چارج آف دی لائٹ بریگیڈ واز پبلشڈ ان انگلینڈ And in 1868, world's first traffic lights were installed outside the Houses of Parliament in London to control the traffic in Bridge Street, Great George Street and Parliament Street. And 1898 this day, the cornerstone of Belur Math was laid in Calcutta, marking the beginning of a new era in the spiritual regeneration of India. Math was based on Swami Vivekananda's vision, emphasizing the principles of service and spiritual growth.
1873 mein His Excellency George Baring Viceroy tatha Bharat ke Governor General ne Muir College ki aadharshila rakhi thi.
1908, a child labor bill passes in the German Reichstag forbidding work for children under age 13. And Finland's Independence Day celebrated this day, marking the day in 1917 when the Finnish Parliament declared independence from Russia. And also in 1958, American poet Robert Frost was awarded his fourth Pulitzer Prize for poetry for his collection, A Witness Tree.
1946 میں سمیدھان سبھا کی پہلی بیٹھک نئی دلی کے کانسٹیٹیوشنل ہال میں رکھی گئی تھی
And in 1965, the animated musical special A Charlie Brown Christmas debuted on television.
1998 میں روس دوارا آرکٹک ساگر میں اپکرانتک پرمانو پریکشن کیا گیا تھا اور 2008 میں اسرو نے یورپ کے پرسدھ اپگرہ پرنالی وشیشگے ای اے ڈی ایم एस्ट्रियस के लिए सैटेलाइट का निर्माण किया था। और अब हम बात कर लेते हैं उन हस्तियों की जिनकी 9 दिसंबर को या तो मृत्यु हुई या जिनकी आज जयंती या जन्मदिवस है।
Yeah. What are we starting with?
जी, मैं एक बहुत बड़े नाम से शुरुआत कर रही हूँ, द्वारकानाथ शांताराम कोटनीस, जिन्हें डॉक्टर कोटनीस के नाम से आमतौर पर पहचाना जाता है। उनका की आज पुण्यतिथि है। वो एक भारतीय चिकित्सक थे और दूसरे विश्व युद्ध के सिपाहियों का इलाज करते करते अपने प्राण त्याग देने वाले निस्वार्थ सेवक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। द्वारकानाथ कोटनीस को द्वितीय चीन जापान युद्ध, जो 1937 से 1945 के दौरान लड़ा गया था, उनकी सेवाओं के लिए चीन में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है और भारत और चीन की मैत्री का प्रतीक इनको माना जाता है। ये उन 5 युवा डॉक्टरों में से एक थे जिन्हें 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन में राहत कार्यों के लिए भेजा गया था।
Yes, I know. And then Dr. Kotnis, China India Friendship Hospital, a gorgeous statue of the Indian doctor, a museum preserving the memories of Dr. Kotnis, and a splendid gallery preserving the belongings of doctor are all preserved with great reverence by the Chinese government and the people.
Bharat ke is mahan doctor ki kahani ko cinema ke parde par bhi utara gaya. Filmkar V. Shantarap ne 1946 mein unke jeevan par aadharit Dr. Kotnis ki Amar Kahani naam se ek film banayi thi aur is film ke patka tha डॉक्टर कोटनीस पर लिखे गए उपन्यास एंड वन डिड नॉट कम बैक पर आधारित है। इसी फिल्म का एक गीत सुन लेते हैं।
यस।
गुलाम नहीं तू जोश में हो, ये देश तेरा होश में हो, लहू से अपने ऐसा लाल नहीं खड़ी कर दीवार, देश को बचाओ रोको तुम दुश्मन के वार।
India's first lady photojournalist, Huma Vyarawala, was born this day in 1913. She spent much of her childhood on the move because her father was an actor in a traveling theatre group. But the family soon moved to Bombay, where she attended the JJ School of Art. That's where she met her future husband, Manikshaw Vyarawala, a freelance photographer who introduced her to photography. And I...
और मजे की बात यह है कि ये जिस दौर की आप बात कर रही हैं, उस दौर में महिलाएं होती ही नहीं थी फोटोग्राफी के क्षेत्र में।
They were there, ladies were there, but they were not allowed to do anything.
हाँ, नहीं थी, लेकिन मतलब इस क्षेत्र में उनको प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और खासतौर पर हाँ प्रोफेशनल तो बिल्कुल ही कोई नहीं था। तो इन्होंने आकर के एक ऐसा क्रांति लेकर के आई कि उसके बाद आज देखिए कि कहाँ महिलाएं दिखाई नहीं देती हैं। उस जमाने में सिर्फ अभिजात वर्ग के लोगों को शौक हुआ करता था, पुरुषों में भी।
True, yes, of course. Gee. And of course, she's famous for having captured several important events and national leaders. So she took pictures for the Illustrated Weekly of India magazine during World War II.
1938 से 1973 के बीच में लगातार इन्होंने सफलतापूर्वक फोटोग्राफी का काम किया और अपने फोटोग्राफिक करियर का की जो शुरुआत थी वो मुंबई से की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2011 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण देकर के सम्मानित किया
था। That is right, yes. And tributes to Kota Shivaram Karant, the well-known Kannada writer, a social activist, environmentalist, Yakshagana artist, filmmaker and thinker. He was depicted as the Rabindranath Tagore of modern India, who has been one of the finest novelists, activists since independence. Karant received Gyanpeeth Award for his contribution to literature in Kannada language.
और उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन किसी कारणों से उन्होंने उस सम्मान को लौटा दिया था। और बाकी तो आपने बताया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया था, पर 1977 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था।
Yes. And remembering John Milton, English poet, intellectual, who served as a civil servant for the Commonwealth of England under its Council of State and later under Oliver Cromwell. He wrote at a time of religious flux and political upheaval and is best known for his epic poem Paradise Lost, 1667, written in blank verse. He was born this day, 1608, and friend jazz trumpeter Donald Byrd was born this day. Detroit, Michigan. This improviser on trumpet had specialized in hard bop style and jazz. Later, he explored funk and soul with plenty of rhythm and blues and bebop jazz. He established a reputation as a solid stylist with a clear tone, clear articulation, and a plenty of melody. Inspired by Herbie Hancock, Byrd had made few jazz fusion songs also.
आज पुण्यतिथि होती है त्रिलोचन शास्त्री की, जो एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में साहित्य के क्षेत्र में। इनका जो जन्म था वो 20 अगस्त 1917 को सुल्तानपुर में हुआ था और आज ही के दिन 9 दिसंबर 2007 को इनका निधन हुआ था। त्रिलोचन शास्त्री को 1989 से 1990 में हिंदी अकादमी ने शलाका सम्मान से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें शास्त्री और साहित्य रत्न जैसी उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है।
And friends, a death anniversary of this very talented lady, Marie Fredriksson, Swedish singer-songwriter, keyboard player, who sang lead for the group Roxette. Brain cancer took her life away when she was just 61 in the year 2019. And of course, most of us are aware of the global success of Roxette, song sung by Fredriksson. Here's a snatch of it, friends. It must have been love.
आज ही पुण्यतिथि है मंगलेश डबराल की, जो हिंदी के आधुनिक कविता के अत्यंत सम्माननीय और शीर्ष रचनाकारों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी कविता को नए अनुभवों से संपन्न किया है। पहाड़ पर लालटेन उनका पहला संग्रह था जो 1981 में आया और नए युग में शत्रु सबसे नया संग्रह है जो 2013 में प्रकाशित हुआ। मंगलेश डबराल अपने समय के सिनेमा, सांस्कृतिक सवालों और संचार माध्यमों के अलावा विश्व की संवेदनशील घटनाओं पर टिप्पणी करते रहे हैं। विश्व कविता के उन्होंने कुछ सुनहरे अनुवाद भी किए हैं और सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं।
A very popular teen idol of the 70s, singer-actor Donny Osmond celebrates his birthday today, friends. December 9, 1957 is the birth date of Donny, who started singing at age 5 along with his siblings in the group Osmond Brothers. Now, Donny has become a worldwide music legend, selling over 100 million records, receiving 33 golden records and has performed to millions of fans around the globe during his illustrious 6-decade-long music career and shows no signs of stopping. And this month, December 2024 will mark the return to the stage for Donny at the famed Edinburgh Playhouse in Scotland as he once again headlines Sir Andrew Lloyd Webber's Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Best wishes to him. Now a very young Donny now singing that old hit Puppy Love. Here goes.
आज जयंती है रघुवीर सहाय की, जो एक प्रभावशाली कवि होने के साथ ही कथाकार, निबंध लेखक और आलोचक थे। वो प्रसिद्ध अनुवादक और पत्रकार भी थे। 1982 में उनकी पुस्तक लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और 1982 में उनकी कविता संग्रह पर इस पुरस्कार को दिया गया था।
ड्रमर बॉय ट्रे कूल ऑफ पंक रॉक बैंड ग्रीन डे टर्न्स एयर ओल्डर टुडे। ट्रेज रियल नेम इज फ्रैंक एडविन राइट III, बोर्न इन 1972 इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी टू American parents. Of course, he adopted his professional name at the age of 12 when he was recruited to play drums by his neighbor Larry Livermore for the punk outfit The Lookouts. So this is a song for Green Day's boy. Here goes.
Oh, I heard you crying loud.
और आज जन्मदिन है फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का। शत्रुघ्न सिन्हा की इच्छा बचपन से ही फिल्मों में काम करने की थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता की इच्छा को दरकिनार करके फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में प्रवेश लिया और साजन फिल्म के साथ अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि फिल्में बहुत हिट रही इनकी, लेकिन इनकी डायलॉग डिलीवरी आज तक पसंद की जाती है।
ठीक उसी तरह से जिस तरह से देश के लाखों करोड़ों बच्चे अनाज के बिना भूख से तड़प रहे हैं, और ये नीच काम करना आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा सेठ दीनदयाल, जिस दिन देश का भूखा बचपन जवानी पर आएगा उस दिन दिल में एक बदले की भावना होगी जो आप जैसे सेठों के पेट को फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, फाड़ दो ऐसे भेड़ियों को, चीर दो ऐसे गद्दारों को।
और बस इसी के साथ इजाजत लेने का वक्त हो चुका है, तो मुझे नईम अख्तर और मेरी साथी सुभद्रा राम